उसके बाद और यहाँ सवाल ये होता है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमारे मियां अब्दुल अजीज का ये असर यहाँ जिक्र क्यों किया है अलामा नाफी ने रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इस बात से नसीब करने के लिए कि वो जो सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात है जो मालूम फरमाए जमाए जारी से शराब होती है मालूम फरमाए जमाए जारी से शराब नहीं होती और जिंदगी शहर को पानी से तैराब होने की जरूरत है नहीं लिहाजा दुरुस्त मुस्तवा नहीं होगा यह ऐसा ही है यह जरूरी नहीं कि अगर जानवर चलता है तो जानवर के दूध में बीमारी नहीं होता ऐसे ही अगर यह मक्की जिंदगी के अनुसारों लिहाज को दूध का शहर बनाती है तो उसमें मुस्तवारी नहीं होगा وهذا القياس قويم ولكن عارضه النقل وهو اقوى منه والله تعالى قال ان هذا يمكن ان الله تعالى قال حدثنا بعين النبي قال حدثنا عبد الله بن ربي قال اخبرني ان الاسلام في قياس عن سالم بن سالم بن سالم بن سالم بن سالم قال فيما ذكرت اسماء الرجل وصنع بريئا والحكيما وما قتل لنفسه सीमा पर कथित कमाल और खाना आदि करेंगे इन चीजों में जिसको आसमान में सींचा हो या जश्मों से सैराब हुई हो या वो आसरी हो गई हो ये रिवायत को राज करें उनकी भाव से मिला बात के करेंगे हमारे जारी करी है उसका जवाब शुराब ने दिया है इमाम बुखारी ने खिलाफ लैस हैं सरजन के जरिए से हदीस की शरह की है और ये बतलाया है कि हदीस में जो गलत वारिस हुआ है इससे मुराद मारे जा रहे हैं आप इनसे मुझे फैसले हो सकता है इमाम बुखारी ने बदलाव की रिवायत को गलत इशारा किया सही व संहार गलत वारिस हुआ है और कान आता लिए खाएं और साथ फरमान के साथ आता लिए वो दरअसल कहता आता है जो अपने रूप के जरिए से बगैर सैराब किए हुए पानी की लेता है सदा पालू फसाबी रहमतुल्लाह ताला कहते हैं जहाँ पानी बारिश का बह कर जाता और बाकी का असली मानी आपू करते हैं दाखिला और नाली इसलिए आदमी के अंदर निकलता है अंदर रज आपको सीधा होती जाती उसके बाद उसको पानी आता रहता और दरकान उससे पानी पीते रहते हैं अब वो बैल लाल जमाते हैं आखरी करते हैं उस दरख्त को जो आसमान के पानी से सैराब हुआ लेकिन ये तस्वीर सही नहीं है क्योंकि इसको जो हदीस में पहले ही जिक्र कर दिया गया है कि वहाँ का हदीस नमाओ और सुंदर सरकार हो जाएगा वहाँ सोते अभी नर से निकल और जो पीकर तैयार किया जाए उसमें नीचे हो बाप की जो मजबूत मजबूर है यानी ये जो बगैर नीचे पैदावार होती है चाहे आसमान की बारिश से हो या चाहे जो है चश्मों और अनहार से हो उसमें जो जाएगा और जो तीसर पैदावार होती है उसमें जो है इस मजमून के अंदर किसी का भी कोई इख्तलाफ नहीं है और ये शरीयत का कानून है कि जहाँ मशक्कत ज्यादा होती है वहाँ मुतालबा कम कर दिया जाता है और जहाँ मशक्कत नहीं होती वहाँ शरीयत का मुतालबा बढ़ जाया करता है तो जहाँ पीने की जरूरत नहीं पड़ती पानी देने की जरूरत नहीं वहाँ पे होती वहाँ तो मुतालबा रखा गया एक बटे दस का और जहाँ पीने की जरूरत पड़ती है वहाँ मुतालबा नित्य औषधि का रखा गया, एक एक बटन बीज का रखा गया। आधा पड़ लीला आधा सत्यूल उगल निरंतरूल निवासी की लगल यानी हनीसन नंबर की माता का जिस समाव हो जो पवन यंत्री धागा कवापर प्रत्याग मकूला पर मुहत्तर यंत्री हललुमा इलारवा अहुंसा का समाव को भी मारवा अन्नत्रेत सल्लल्लाह वली वसल्लम ने बिल्कुल निकारवा और बार इलार को सल्ला को के बोले इलार को के बोले इमाम बुखारी फरमाते हाला तस्वीर और बोले ये उगल की तस्वीर है। इसी तरह से ये बात बाबू में वाकई हुई है, लेकिन यहाँ बता दें ये महल वाकई हो गई है। अव्वल से मुराद नंबर की हदीस है, तभी सलाम में खुद मुतल्ला है और आगा का इशारा हजरत अबू करीम खुदी की रिवायत है जो अगले बाब में आ रही है। जब अब तक अबू करीम के खुदी के नाम काला की रिवायत आई ही नहीं तो उसकी तरफ आगा से जो इशारा इस शरीर के लिए होता है कैसे इशारा किया जा सकता है। आपकी तरफ पढ़ी इस पर अभी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सलाम भाई ने अमल की तस्दीक के बाद बस गिरा देना ये नुस्खा की गड़बड़ है। और अल्लाह के मामी ने लिखा है कि ये रिवायत तिरबी के नुस्खे में हजरत अबू करीम खुदी रजी अल्लाह ताला की हदीस के बाद वाली हुई है। बहरहाल अलसूफी यहाँ पर है इसलिए भी कुछ और भी कर दी जाए। अल्लामा सिफी कहते हैं कि हालत इशारा अबू करीम की आने वाली हदीस की तरफ सामने आ रही है, ये हालत की तरफ से इशारा कर दिया गया। तस्वीर अव्वल का मतलब ये है कि इनोनर रजी अल्लाह ताला की आम है और अबू करीम की हदीस खास है, लिहाजा उसके उमूम को हजरत अबू करीम खुदी रजी अल्लाह ताला की हदीस के हुदूद से मुकय्यद किया जाएगा। इसी को इमाम बुखारी फरमाते हैं ये नौ लम यौक फिल अव्वल वो बयन फी हाजा वक्त इस वास्ते कि अव्वल यानी जानर की हदीस में तौकीद को तकदीर नहीं की गई और यूं कर दिया गया कि माता का इस्तेमा और कुछ और किसा की इसला की अबू करीम खुदी की हदीस में बयान कर दिया गया और तौकीद कर दी गई कि कितने में कुछ है और ज्यादत मकबूल है और ये फरमाते हैं कि बयान ज्यादती है और सिफात की ज्यादती मकबूल होती है। इमला उत्तर हम उत्तर हुआ है कि आया ज्यादती है सिफात मुतलक मकबूल है या इसमें तफसील है आप लफ्ज मकबूल और बाद मुतलक करते और बाद मुराद तफसील के काबिल हैं। आपने अब्दुल हादी वगैरह ने किसी तीसरे कौल को राजू करार दिया और वाकया यह है कि ज्यादती अगर शाद न हो तो मकबूल हुआ करती है और यहाँ शुरू नहीं बल मुफस्सर वाला तो भी आए मुहम और मुफस्सर फैसला करता है मुहम पर, यानी एक कायदा है कि अगर किसी रिवायत में या किसी दलील में इबहाम हो और दूसरी दलील में तस्वीर हो तो तस्वीर हो दलील वो हम पर मुकद्दर रखा जाता इला रवा अहलुस सनद। यूं फरमाते हैं उस वक्त है जबकि मुकद्दर का नाकिल अहले सब्त हो मुकद्दर अहले और यहां सूरत हाल यही है कमा रवल कौल अब्बासी अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे कि मैं बात ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे में नमाज अदा करी और बिलाल कहते हैं फजल्ला तो हजरत बिलाल मुफ्ती थे इसलिए उनके कौल को ले लिया गया और हजरत फजल नाबी ने उनके कौल को छोड़ दिया गया। मालूम हुआ कि जब इस बात को नबी में तारुफ हो जाए तो इस बात को तरजीह मिलती है। अब क्योंकि अबू करीम खुदी की रिवायत में पांच वक्त का इस बात किया जा रहा है और एक नंबर की रिवायत उससे साबित है यानी कह लीजिए कि कोई नाकी है लिहाजा एक नंबर की रिवायत पर उसके शरीर की रिवायत तो तरजीह होगी इस्लाम के शामिल और यहाँ ये नहीं कहा गया है कि वो किस दिन और किस दिन होते हो और सही रिवायत में तो सिर्फ मौजूद आम पवित्र है जो वतन से नापे जाते हो। लिहाजा अब शरीर की रिवायत का ताल्लुक सिर्फ मौजूद आम से हुआ और अंदर की रिवायत का ताल्लुक मौजूद दोनों से हुआ और रिवायत अंदर की रिवायत की तस्वीर कैसे बन सकती है। लेकिन बाद जवाब दिया है कि असल में रिवायत में तो सिर्फ ये बताया गया है कि कितने उज्र है और कितने नहीं है, ये बता दिया गया कि जहाँ पर पीने और शराब करने की मशक्कत बर्दाश्त करनी पड़े वहाँ पर उज्र है और जहाँ बर्दाश्त करनी पड़े वहाँ पर जितने उज्र है। अब रह गई ये बात कि कितने है और कितने नहीं है। अब होगा और दूसरा कौल यह है कि जो गैर मौजूद है उसके तरीके और तकीर में उसके लाजिम होगा जैसा कि दाऊद के जाने ही फरमाते हैं। इसी तरह से मालिकिया और हनाबिला भी ये कह रहे हैं कि गैर मौजूद पांच जब पांच वर्ष के वजन को पहुंच जाए या 1648 वर्ष पर्दा किया हो जाए तो उसके अंदर आएगा। वल्लाहु तआला आदि अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं और उनके जिसका फल नहीं होता है सब ने उसकी गुवाही बना दी। दूसरे भी उन्होंने उसके लिए कोई निसाब नहीं रखा है। जवाब है कि की रिवायत का ताल्लुक और कीमत 40 दिरहम होती थी एक उड़िया होती थी। अल्लाह सुब्हानहू अअलम व बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तआला व तआला अन फाल बाब ला तकीमा दुन खम्स के और पांच वक्त के सामने तरबान के मतलब में बयान में रखा काम कि जम्हूर आलमा के नजदीक कुछ के लिए पांच वक्त निसाब है। यही एक में तलाक का उस्ताद है मतलब है फिर उसके बाद और जारी है आज फिर उसके बाद 3000 में दो बातों में इख्तिलाफ है। अव्वल इसमें कि आया कि पांच वक्त तहजीब है या तकरीब है। इमाम अहमद ने हमला रहमतुल्लाह अलैह और शाफिईया के साथ उसका तीन मानते हैं। इमाम नौवी रहमतुल्लाह अलैह तेरे मुखरिज और तेरे मुहर्रम ने तकरीब के कौल को राजिब करार दिया। दूसरे इसमें इख्तिलाफ है कि जो चीजें मौजूद नहीं है उनका क्या हुक्म है, अभी मैं उसकी तरफ विचार कर चुका। राहु के लाए भी कहते उसके शरीरों में शरीर में उच्च है और ये ही चाकैया का फौल है। और चाकैया का दूसरा फौल पढ़ना अगला हमारे दिया का मंजर ये है कि उसमें पांच दोषों का वर्ग मौतलत होगा, यानी 1648 होता दिया। और इस सारे संस्कृति का फर्क खाला इस तरह के बात के बाद इमाम हनीफा और उनके मानने वालों को मौत की इनकी तरफ इस सारे संस्कृति का फर्क खाला उन सब भारत नया भारत हमारे मन भारत की मोहम्मद का बिलाल में अजर हमारे मन का आकार भी नहीं दे सकते इलाका में ये सुना काला के बाद वैसी मात्र मोहम्मद के उसने जरूरत मुलाकात की अगर इंसान की जरूरत इससे इस बात की तरफ से सारा फरमाया कि अलुमिनकार का वाली होती है, ये मसला मुख्तलिफ किया है। साफेला हनाबिला जी फरमाते हैं कि हुबूब में इश्तिदाद के बाद और इमार में दूसरे तलाक के बाद आपके मालिकिया खिलाफ नहीं फरमाते हैं कि हुबूब में इतराक के बाद इतराक पर इतमाम पर करते हैं गेहूं वगैरह के बाल को मालने और दलने को। और मतलब ये है कि जब इतफाबी हो जाए खूब अच्छा हो जाए पक जाए अगर पूरी तरह न पका हो तो उसमें सरकार वाजिब होती है। लामा दबीर ने लिखा है बल मुराद दी तो आप ही हिंदी हो वस्ते बना हो कुरान इल्मा वही पाते अपिल अर्थ ये तमाम ही हिंदी खाना किया कि तीनों इमाम के अलग अलग तीन मौलत में इमाम पर अल्लाह ने फरमाते कागज हुजूरी फरमाते हैं और इमाम मोहम्मद फरमाते हैं डाल दिया जाए ये जहाँ पर खर्च उतारे जाते हैं। अब हो सकता है कि हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जवाब नब्ज जिक्र करके इस बात की तरफ इशारा फरमाया हो कि ज़कात उस वक्त वाजिब होती है जब फल तोड़ लिए जाएं यानी हदीरा में हासिल हो जाए जैसा कि इमाम मोहम्मद कहते हैं। लेकिन ये चीज बड़ी मालूम होती हो इसलिए आपको ज़कात फौर है वजूद ज़कात फौर है। अगर इमाम बुखारी ने अपनी तर्जमे से आयत करीमा वातु हक्कहु यौम हिसाबिही की तरफ इशारा फरमाया वातु हक्कहु यौम हिसाबिही की तरफ इशारा किया। वैसे इस आयत की तफसीर में इख्तलाफ है कि हक से क्या मुराद है। हजरत इब्न अब्बास हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि हक से वाजिब मुराद इब्न उमर वगैरह फरमाते हैं ज़कात आपके پہ نظر کرتے ہیں تو حدیث کے بعد یوز ہے حدیث کے بعد سے ہی ایک بات نکلتی ہے وہاں یوز اور کچھ سبھی ہیں یہ سات وہاں یوز اور کچھ سبھی ہے قیامت کو سمجھتا تھا کیا بچے کو چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ صدقے کی کھجوریں چھوٹ جائے صدقے کی کھجور چھونے کے اندر کوئی مضائقہ نہیں ہے لیکن امام بخاری صاحب نے لفظ حل کرنے میں اس لیے بھی تو فرما دیا ہے کہ کرنے بچہ اگر صحیح ہے اور وہ پھلوں کو چھو لے تو وہ سستا ہے کہ بے ضروری کی وجہ سے عموم ملا ہے اور تعداد کے لیے سستا ٹھیک نہیں ہے اس بات سے امام بخاری تصویر کی طرف آئے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بچہ ایسا ہے کہ جس کے لیے صدقہ مباح ہو سکتا تب تو اس کے چھونے میں مضائقہ نہیں کہ اگر کھا لیا منہ میں ڈال دیا تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر بچہ ایسا ہے کہ اس کے لیے صدقہ مباح نہیں ہے تو اس کو مت سے بھی روکنا چاہیے یہ مت کہیں ذریعہ نہ بن جائے اگلے صدقہ کا اگر وہ سرکار چھو لے یا انہوں نے ڈال لے تو ہوا کیا اس کا جواب یہ مسلط نہیں لیکن اس کا ولی تو مسلط ہے اور ولی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کے احوال کی نگرانی کرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ
جمہور علماء تو بلا تفصیل جواب کے قائل ہیں
حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قول مشہور کے ساتھ لیکن اس کا دوسرا قول مشہور ہے وہ یہ ہے کہ وجود سے پہلے پہلے بے جائز اور وجود کے بعد بے جائز نہیں ہے. اور غالباً اس اختلاف کا منشا یہ ہے کہ زکات کا تعلق آیا شہر معین سے ہے یا بیمہ سے. جمہور علماء کے نزدیک زکات کے وجود کا تعلق زندہ مذکر سے ہے, لہذا اس شہر معین کے فروخت کرنے میں اشکال نہیں ہے. اور ممکن ہے کہ امام شافعی اس مقام میں زکات کو اس شہر معین کے ساتھ واجب سمجھتے ہیں, اس سے متعلق سمجھتے ہیں. اللہ عالم. اب اس کے بعد اور مطلب اگر وجود کے بعد کسی شخص نے فروخت کر دیا تو آیا جو ہے صدقہ کس کے ذمہ واجب ہوگا, بائے کے یا مشتری کے؟ امام احمد فرماتے ہیں بائے کے ذمہ واجب, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہے تو بائے ہی کے ذمہ, لیکن اگر اس نے بیچتے ہوئے مشتری کے ذمہ شرط قرار دی کہ جناب اس کی زکات آپ کو دینی پڑے گی تو اب بائے کے ذمہ نہیں رہے گا, مشتری کے ذمہ ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شراح کرام حافظ نے حضرت سلامی وغیرہ نے یہ نقل کیا ہے کہ مشتری کو اختیار ہے, چاہے جو ہے وہ بیع کو باقی رکھے اور چاہے رد کر دے, بہرحال اس خوشی سے وصول کیا جائے گا اور وہ بائے کی طرف رجوع کرے گا. یہ اصل رجوع تو بائے پر ہوا ہے. ہماری کتابوں میں مسئلے کی تصویر اور لکھی ہوئی ہے. حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الفتح میں جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیع ساعی مسجد کی موجودگی میں ہوئی ہے تب تو ساعی کو اختیار ہے, چاہے بائے سے وصول کرے اور چاہے مشتری سے وصول کرے. اور اگر اس کی عدم موجودگی میں ہوئی ہے تو پھر وہ بائے سے زکات وصول کرے گا. اللہ تعالی اعلم. فرمایا ہے تھوڑا سا اختلاف ہے. ٹھیک ہے, ابھی لے لا اور زیان طور اللہ سے فرمایا دوسرے طرف کے طریقے سے منتظم بے جائے اور ابھی مجھے بھی اس پر ایمان عمل کر دیا. یزید نے بھی حبیب فرماتے ہیں منتظم جائے اس پر اس بات کو ایمان عمل کر دیا مگر یہ صحیح نہیں. حضرات امام سلاطہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک کے ساتھ کیا اپنا جائے اور بے شک اس وقت رکھ جائے اور بات رکھنا جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک سب کیا تو ناجائز ہے اور باقی سب صورتیں جائز ہیں. ہمارے ائمہ اربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب کی توضیح یہ کی جا سکتی ہے کہ وضو طلاق سے پہلے جو بیع ہوتی ہے اس کی تین شکلیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بے شرط پکڑ ہو, یعنی بائے بیچتے ہوئے مشتری کے دن میں یہ شرط لگا دے کہ آپ کو کل فوراً توڑ دینا پڑے گا, یہ تو بے اتفاق جائے. دوسری صورت یہ ہے کہ بے شرط سبزیاں اور شرط ہو, یعنی مشتری یہ شرط قرار دیتا ہے کہ آپ کل درختوں ہی پر لگے رہیں یہ بھی اتفاق نہ جائے. تیسری صورت یہ ہے کہ نہ یہ شرط ہو نہ یہ ہو بلکہ بیع مطلق ہوئی ہو, اس میں اختلاف حضرات علیم ہے. طلاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ناجائز ہو, اور امام ابو حنیفہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ جائز ہے. حدیث پاک نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیع اسلام بے حقائی ابو اطلاق ہوا, یہ حضرات علیم طلاق کی تائید کرتی ہے مفہوماً منسوخاً. منسوخ تو یہ ہے کہ قبل حضور طلاق بے جائز نہیں, یہ حضرات فرماتے ہیں بیع مطلق قبل حضور طلاق ناجائز, اور مفہوم یہ ہے کہ بعد حضور کی طلاق جائز ہے, یہ حضرات فرماتے ہیں کہ ناجائز. لیکن یہ حدیث حضرات حنفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مخالف ہو جاتی ہے. یہ طلاق کی صورت میں وہ جواز کے قائل ہیں مطلقاً, چاہے قبل حضور کی طلاق ہو اور چاہے بعد حضور کی طلاق ہو, مفہوم تو حنفیہ کے موافق رہی لیکن ہم دونوں مخالف ہو گئی. اس لیے اس کی توجیہ و تعبیر کی ضرورت پیش آئی. بعض اقناف نے جواب دیا کہ اصل میں یہ نہی ارشادی ہے, نہی تحریمی نہیں ہے, اور بعض کہتے ہیں یہ قید واقعی ہے. اصل میں زمانے ہی میں بیع جو ہوا کرتی تھی وہ حضور طلاق کے بعد ہی ہوتی تھی, لیکن یہ جواب بعید ہے. شاعر کلام کو کسی معنی پر محمول کرنا چاہیے نہ کہ اس کو بے معنی بنانا چاہیے, اور بعض صاحبوں نے اس کو سلم پر محمول فرمایا ہے. یہ مسئلہ اصل کتاب الحجروں کا تھا, لیکن یہاں پر تمہاری رعایت اور امتحان کی وجہ سے اس کو بیان کیا گیا ہے. ویسے کتاب الحجروں روایت کی ہم جس جگہ کا حوالہ دیں گے اور یہ غسل طلاق کی تقریب, مطلب یہ ہے کہ پکنے کے آس پاس شروع ہو جائیں اور پھل پورا ہو جائے پورے ہونے کے قریب ہو جائے. جب پھل پورا ہو جاتا ہے پورے ہونے کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے فساد کا اندیشہ نہیں ہوتا. باہوں نے جو یہ فرق بیان کیا حتیٰ تحمر رہا مارے مطلوبی شبت اور تحمر رہا ترخ شبت ولی المحمد اللہ. بہرحال امام بخاری نے حدیث سے ثابت کیا ہے کہ بیع بعد وجوب الزکات بھی جائز ہے جیسے قبل وجوب الزکات جائز ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور سلام سے پہلے منع کیا, حضور سلام کے بعد مطلقاً اجازت دی ہے. اور بڑھنے طرف یہ ہے کہ جو حدیث مصنف نے کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھوڑا ایک شخص کو عطا فرمایا تھا. بعد میں اس شخص گھوڑے کو بھی سستے داموں پر فروخت کرنے لگا. حضرت عمر کا ارادہ ہوا کہ خرید میں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا, آپ نے فرمایا لا کرو اس کی صدقہ دے گا, اب صدقہ کے اندر جو ہے اور نہ کرو. اب یہاں پر جو ہے تو احتمال ہو گیا اپنا خریدنا جائز نہیں ہے, اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ صورت میں ہے جبکہ مصدق علیہ سستے داموں پر کر دے تو گویا جو ہے مال صدقہ بلا کسی قیمت کے واپس آ گیا, یہ عوض کی شکل بن گئی. ویسے مسئلہ مختلف پیہا ہے. حضرت حسن کسی نے رضی اللہ عنہ رائے اور رائے کیسے مسئلہ جائے حضرات جمہور فرماتے ہیں تنزیہی ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور زاد نے کیا کہتے ہیں حرام ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان بھی اسی طرف ہے، جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعود فی صدقۃ قاعد اللہ تعالی فرمایا، حضرات جمہور اس نہیں کو تنزیہ پر محمول کرتے ہیں، اس لیے دوسرے روایت میں العائد کی طرف اسی کر عائد کی قیلی، اور یہ کتے کا فعل ہے اور یہ نسکی تنبیہ کے لیے ہے اور تنبیہ کے لیے تحریم لازم ہے، واللہ اعلم. ولا باس ان یشتری صدقۃ غیری، دوسرے کا صدقہ خریدنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، یہ مطلب ہے مجمع علیہا ہے، ایسے اربعین سے کوئی اختلاف نہیں، لان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمع ہے المتصدقہ
لیکن امام موفق ابن غلام احمد رحمۃ اللہ علیہ
परमात्मा की जिनकी तो रिवायत सत्ता मकालिक नहीं है, बल्कि उसका मतलब ये है कि नहीं को फर्ज दिया जा सकता है। और इस तरह की बात नहीं, वो साफ तौर से इस बात पर दलाल नहीं करती कि इमाम हसन ने नबी के लिए सतर्वे को जायज करार दिया। फिर उसके बाद ये समझिए कि इसमें खिलाफ से तकलीम सदफा या हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खास ये दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम इसमें आपकी शरीक दोनों कौल में अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए इस्तिफा काम करार दिया गया या ये कि हुजूर के लिए पाक हसन का हराम करार दिया गया है, इसकी अलग अलग हिम्मतें हो सकती हैं। अगर सारे अंबिया इसमें शरीक हों तब तो तहरीफ की वजह यह है ताकि किसी आदमी के जहन में तारीफ की वजह यह है कि किसी आदमी के जहन में ये ख्याल न आए कि अंबिया ने नबूवत का काम सिर्फ उन लोगों के साथ बदने और क्षमता दूरी के लिए शुरू किया है। और अगर हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिकायत तो उसकी हिम्मत ये कहती है कि आपके लिए बतौर नबूवत के अलामत के रखा गया है कि आप सदका नहीं खाएंगे। वल्लाहु तआला आलम। दूसरा मसला है आले नबी का ये कौन है, इसके अंदर उलमा का इख्तिलाफ है और चार कौल है। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं इससे मुराद बनू हाशिम और बनू मुतलिब, इमाम अबू हनीफा और मालिक कहते हैं इससे मुराद बनू हाशिम, इमाम अहमद बिन हंबल की दो रिवायत हैं, एक रिवायत इमाम शाफी के मुआवजे और दूसरी रिवायत इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक के मुआवजे। अकबर नंबर तीन अकबर फरमाते हैं कि बनू कुतई ये आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है और बाद मालिकिया इरशाद फरमाते हैं कि मालिक ने फिर की जो औलाद है वो सब के सब आले नबी का हिस्सा। फिर उसके बाद ये तंबू की असलत को भी साथ जो ज्यादा अहम इख्तलाफ है वो पहले ही दो कौलों का है। शाफी रहमतुल्लाह अलैह को आले नबी बताते हैं और इमाम मालिक को हनीफा सिर्फ बन हाकिम को बताते हैं। शाफी की दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बनाई उन्हें तो तस्लीम किया था तो आपने बनू हाशिम के साथ बनू मुतलिब को भी दिया था। हजरत उस्मान और जुबैर से मुतलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और यह अर्ज किया कि या रसूलल्लाह बनू हाशिम को जो अल्लाह ने आपके वजह से फजीलत अता फरमाई है उसका तो हम इनकार करते नहीं हैं, लेकिन बनू मुतलिब और हम तो सब जो है बराबर हैं, फिर क्या वजह है।